ہے ابھی تک ہمارے بھیا نہیں آئے کسان بھیا نہیں آئے چاروں طرف میں انہوں نے پڑھ رہے ہیں میرے پتا جی مجھے سن رہے ہمارے پتا جی نے بھی ہماری سرخی مل گئی میری بچیا بھی مل گئی کسان بھیا بھی نہیں آئے اور چاروں طرف میں انہوں نے لگ رہے ہیں کام کے چھوٹی چھوٹی دھوڑیاں بھی پڑ گئی چاروں اور ہریالی چھائی ہوئی ہے کسی کلیان نہیں آیا ایسے پتے میں دور چل رہا تھا تو اتنے دن سلام کر گیا ہے دادا جی یہی لگا گرو ہم کو ایک چھوٹی کر گئے اور بھیا کے چرن پکڑ کر کے ہم رونے لگ گئے بھیا بھی رونے لگ گئے پہلے نہیں بند ان کو ہم لوگ کیسے بھول سکتے ہیں میں کام میں ڈر چکا کہ میں نہیں آ سکتا ابھی تمہارے لینے کے لیے آئے ہیں ابھی تم ہمارے ساتھ پر دور کر دیتے ہیں اور تمہیں انمتی لے کر کے تمہیں ابھی برسانے میں لے کر وہاں پر پورا پورا تیار ہے اوپر میں جہاں پر بھی دان گڑھ گڑھ ہے اوپر میں وہ ٹوٹی میں چاروں طرف سے چولہے لگ رہے ہیں میور سوکھ رہے ہیں پیر بھڑک رہی ہے چاروں طرف میں ہریالی چھائی ہوئی ہے آج ابھی میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر کے انہوں نے ان کے ساتھ سے اور سسر سے انہوں نے انمتی منا لی اور وعدہ کیا کہ میں کل پرسوں میں دے جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ایک مہینے تک ہم اپنی بہن کو اپنے یہاں تلناسک طور پر لوگ ہم کو رکھنا ہے اس کے پتا سے وہ کرنے لے گئے اور وہاں پر جا کر کے میاں رونے لگی میاں سے نکل گئی اس کے بعد میں جب شانت ہوئی تو وہ اٹھ گئے اوپر پہاڑ پر جہاں کی گرم میری پروت ہے وہ سب لگے ہوئے ہیں بلاس اتیادی گرم میں کسی بھی پتا سے ان کی بھی لائن ملنے لگی سخیاں چلا رہی ہیں شام کو کبھی شام چلا رہے ہیں سرسوں کو کبھی تو ایک طرف سے لگے ہیں ان کو آدھا قسم بیٹھے ہیں اور کسی بول سے ہی آ رہے ہیں ارادہ جی نے درخت والے ان کو پکڑ لیے کبھی آمنے سامنے بیٹھ کر کے چولہے جھول رہے ہیں کبھی چولہا ادھر جاتا ہے تو رادا جی اوپر ہو جاتی ہیں کچھ نیچے ہو جاتے ہیں کبھی ادھر اوپر میں جاتا ہے تو کبھی رادا کچھ نہیں اوپر ہو جاتے ہیں رادا جی نیچے ہو جاتے ہیں اس پتا سے چولہے لگ رہے ہیں اور جھول رہے ہیں اور سکیاں مغلار رات جا رہے ہیں مغلار آگے بولیے تو کیا بولیں گے اس کے بعد لوگ اور چلے گئے बरसाना में, बरसाना में जाकर वहाँ पर इधर घर में ढोल रहे हैं, राधा जी के मन के पास में जैसे जी ने देखा ये सुबह कहाँ से आया, आपस कुछ गड़बड़ी है। मैंने सुबह को डाटा कि तू क्यों आया, हमारे घर के आमने सामने से क्यों आना जाना कर रहा है, तुम यहाँ मत आओ, ये क्या कहूँ क्या थी मेरा बछड़ा मैं छोड़ दिया हो गया सर, बहुत भयंकर में मैंने छोड़ा वो बछड़ा नहीं मिला, इसीलिए मैं पूछने के लिए आया तेरा बछड़ा क्या यहाँ आ गया, तो हो सकता कि गुरु में बछड़ों में करके यहाँ आ गया हो, मैं जरा छोड़ना चाहता हूँ तो जान छोड़ ले यहाँ पर तुम्हारा बच्चा कहाँ से, तो वो ढूंढने के लिए भीतर में चला गया, दूरशाला इत्यादि सब देखने लग गया और इसी बीच में श्रीमती जी से दिखे मिल करके उसने राधा जी को कोई उपाय बतलाया, राधा जी के निरह में करने से वो ठीक राधा जी जैसा देखने में था, राधा जी जैसे बोली थी उनकी बोली जैसे थी, उम्र जितनी थी सब प्रकार से वो ऐसा ही था, बस कपड़े पहनने का केवल अंतर था। उन्होंने राधा जी का वेश अपना जैसा बना दिया, अपने राधा जी का वेश बना करके वहीं पर बैठ गए, राधा जी वो बन गए और उन्होंने राधा जी को अपना कपड़ा, अपनी पगड़ी, अपनी लड़कियाँ और पहनने का जैसा वो होता वैसा सब कुछ एकदम सुबल जैसा अब उनको बुला और एक छोटा सा बछड़ा, नया छोटा सा बछड़ा उनकी गोदी में दे, जिसे कोई न समझ सके ये महिला है, इसलिए इस चीज को ढकने के लिए, बस्तर को ढकने के लिए यहाँ पर बैठा दिया, बछड़े को लगा दिया और आकर के सुबल के स्वर में राधा जी कहने लगी सुबल बन करके, देख भैया मैं कह रहा था ना कि हमारा बछड़ा यहीं पर है, देखो हमारा बछड़ा मिल गया ना, मैं बछड़े को लेकर के अब मैं जा रहा हूँ ये कह करके और उसको चकमा दे करके राधा जी निकल उठे और वो कृष्ण गोचारण कर रहे थे गोवर्धन में, वहां पर लोग पहुंचे, कृष्ण ने उनको देखा करके सुबल तू राजा जी को नहीं देख सकते आया, मैं कैसे ले आता, मैं नहीं ला सका, क्यों नहीं ला सका, अरे वहां पर पारे पर पारे चार पांच पारे पड़े हुए हैं, वहां पर वो जटला इतनी बदमाश है कि वो जाने नहीं देती, प्रवेश नहीं करने देती है और आज तो भूमंडू भी राधा जी का पति भी गठिया लेकर के वहां पर खड़ा था, यदि कोई कृष्ण आए उनका सखा तो उसका टांग तोड़ देंगे, इसलिए मैं गया किंतु वहां से लौट करके आ गया, वो राधा जी से मेरी भेंट ही नहीं होने दी, बहुत मैंने चेष्टा की किंतु वो फिर से बड़े अफसोस करने लगे कि जी अब सखा मैं क्या करूं, मैं उन्होंने कहा कि तो मैं क्या करूं, अब एकदम बिना में आतुर होकर के छटपट जपछट करने लगे, प्राण यहां तक आ गए, बछड़े को उन्होंने रख दिया है और रख करके अपनी पगड़ी हटा दी और इसने मैं ललिता विशाखा इत्यादि न्याय कहाँ से जुट गई और देखा जो सखियों का पूरा समाज और राधा जी सुबल के वेश में वहां पर खड़ी है, कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ, फिर गले से दोनों मिल करके वहीं पर झूला रचाया और झूला रचाने के बाद में उसी बछड़े को लेकर के बछड़ा छोड़ दिया और श्रीदान जी फिर वो चले गए और जाकर के किसी प्रकार से वो राधा जी सुबल बहुत चतुर वहां से किसी प्रकार से वो वहां से निकल करके चला आया और दोनों को मिलते हुए देख करके बहुत ही आनंदित हुआ, कृष्ण उसकी बार बार प्रशंसा सुबल की करने लगे। इस प्रकार से आज वृंदावन में ये लीला होती है, रात में भी ये लीलाएं होती हैं, विशेष करके राधा दामोदर में गोविंद जी में आज राधा जी को सुबल सखा बनाकर उनके हाथ में बछड़ा दे देते हैं और उनको इस प्रकार से दिखलाते हैं, सुबल को भी राधा जी बना करके आज सर्वत्र ये लीलाएं
अभी इनके मुख से एक सुंदर कीर्तन सुनेंगे हमारे, क्या नाम है इनका,
मन सुखा,
हाँ जिनका मन सुख गया है, ऐसे ये मन सुखा जी हैं, मानो विपत्ति का पहाड़ गिर गया हो। कीर्तनियों में एक बड़ा गुण होता है कीर्तन, जो कीर्तन सुंदर करने वाले बड़ा गुण, वो दूसरे के कीर्तन में नहीं बोले, मुख चुरा करके रखे और उनकी आशा रखें कि सभी हमारा फॉलो करें दूसरे, किंतु दूसरे के कीर्तन में वो नहीं बोलेंगे, ऐसा इनका स्वाभाविक गुण है। इनका कोई दोष मैं नहीं देखता, ये गायकों का ही ये दोष होता है। अभी सुनिए इनके एक कीर्तन सुनाइए। कल से ही दुख लगे हुए, रोग लगे हुए, समस्याएं एक पर एक, समुद्र में जैसे तरंगे आती हैं, एक गिरती है दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है फिर तीसरी आती है, ऐसा जगत में कोई नहीं है जो दुखी न हो, किसी को कम दुख है किसी को अधिक, किंतु दुखी सभी हैं। बुढ़ापा का दुख जरूर आएगा, लाख चेष्टा करो बुढ़ापा आएगी और जोर से तुम्हें भुगा लेगी और अंत में प्राण निकल जाएंगे और इसको जला दिया जाए, ये भी अनिवार्य है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, कृष्ण ने स्वयं जगत का कल्याण कैसे हो, जगत को जीव कैसे सुखी हो, इसके लिए भगवान अवतरित होते हैं, अपने भक्तों को बीच बीच में अवतरित कराते हैं। इस जगत से पार करने के लिए, दुखों को पार करके सुख और शांति से रहने के लिए बस एक ही उपाय है, वो क्या, भगवान का गुणगान करें, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करें, इन पदों का गायन करके अपने मन को उसमें रमाए, तब तो आदमी सुखी हो सकता है। यदि कोई कहे कि खाना पीना कैसे चलेगा यदि इसी में रमाए, कैसे लगेगा, मीराबाई का गुजारा नहीं हुआ, हम लोग दिन रात इसी में लगे रहते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। जिसको प्रभु ने पेट और मुख दिया है उसका सबका गुजारा वो प्रभु करते हैं, दाता राम है,
सबके दाता राम,
सबके दाता राम, पशु पक्षी की पतंग ऐसा कोई नहीं है जिसके दाता राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, इस पर विश्वास कर करके भगवान का हरिनाम करो तो देखो तो संसार की परिस्थिति बदल जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तव कथा मृतम तप्त जीवनम कब्जीर्णितम कल्मषा, भगवान की कथाएं ऐसी हैं उनमें कितनी शक्ति है, वो जसमनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पंगु को पहाड़ लगाना देता है ये कथाएं, पंगु भी बड़े बड़े गिरिराजों को लांग जाता, मुख को बाचाल बना देता है, सारे दुखों का अंत कर देता है भगवान का एक नाम यदि कोई करे, और निरंतर यदि नाम करे तो उसका पाप ही क्या है, न हो तो परीक्षा करके देखो ये दूर होता है कि नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, रसिकों ने, भावुकों ने कृष्ण लीला का विविध प्रकार से गान किया है, हम लोगों को संगीत अच्छी लगती है, सठी का संगीत नहीं कृष्ण लीला का ऐसा सुंदर वर्णन किया, जो सावन आया कुहार पर पड़ रही है, मयूर कूक रहे हैं, कोयल भुहक रही है, हिंडोले लगे हुए हैं, कदम्ब के फूल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर सुगंधा आ रही है और उसमें कृष्ण को झुला रहे हैं, मल्लाग राग से गान करते करते उसमें तक देखेंगे दूध कहाँ चला जाएगा। इसलिए कृष्ण मंत्र में, कृष्ण नाम में, कृष्ण संगीत में, कृष्ण की लीला कथाओं के चिंतन में और स्मरण में इतनी शक्ति है कि सारे दुख भाग सकते हैं, एक ही जन्म में भव सागर को यथाशीघ्र पार करके भगवान के लोक में भगवान की सेवा में निमग्न हो सकता है। हम सभी भगवान के दास दासी हैं, अभी संसार में भगवान को भूल करके हम लोग इस जगत में आए हैं और माया धानी में हमें पीस रही है, उसमें कोई भेदभाव माया में नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ती, जो कृष्ण को भूल रहे हैं, माया लिप्त हो रहे हैं, उन सबको वो अच्छी तरह से शत्रु की भांति में पीस देगी, उसमें गरीब अमीर धनी गरीब रईस जमींदार किसी का भेद नहीं है, भाव नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको सत्तू की तरह में पीस देगी यदि भगवान का भजन नहीं किया। केवल ये संगीत कीर्तन मनोरंजन के लिए ही नहीं है। जब तक हम सुनते हैं देखो तो कैसा इसके प्रभाव, ये संसार को हम भूल जाते हैं, दुख को भूल जाते हैं और इसमें तन्मय हो जाते हैं। इसलिए साधु संत लोग या तो संसार में रहते हुए अथवा उसको त्याग करके भगवान का नित्य निरंतर गुणगान करते हैं, नाम करते हैं। उल्टा नाम जपत अभी जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान बन गए वाल्मीकि जी। अरे मीरा को देखो कितने उसको कष्ट, कितने कष्ट दिए उसको, सांप से कटवाने की चेष्टा की, उसे विष डलवाया, उसे जलाने की चेष्टा की, नहीं जला। प्रहलाद महाराज जी को भी देखो, प्रहलाद महाराज के ऊपर में कितनी समस्या, एक हिरण कहीं जंगल में चल रही थी, भोली भाली बड़ी सुंदर, वो जंगल में चलते चलते एक ऐसे स्थल में जा पहुंची जहां पर की बड़ी सुंदर सुंदर घासें हरी थी, एक तरफ में नदी और दूसरे तरफ में चार पांच बड़े 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 कुत्ते शिकारी, और एक तरफ में कुत्ते के ठीक विपरीत तरफ में एक बड़ा भारी मोटा शिकारी धनुष और बाण लिए हुए तैयार है, और एक तरफ में आगे ले लेंगे तटरस भोजन, उसमें जाल लगा हुआ विराट, इसे देखकर कि हिरण घबरा गई, मरने वाली ही है, चारों तरफ से विपत्तियां हैं, किधर जाए, जिधर में जाल था उसके पीछे में आग जल रही थी, इसलिए किसी तरह भी उसका बचने की कोई आशा नहीं रह गई। देखा जब तो मर रही है, मैं क्या करूं, उसने आंख बंद कर दिए और बोली हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हर, हे गोविंद मैंने आपके चरणों में अपने को मैंने समर्पण कर दिया, अभी इस विपत्ति में आप ही हमारे रखवाले हैं। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों तरफ में विपत्तियां, एक तरफ में आग जल रही, एक तरफ में वो जाल, एक तरफ में कुत्ते, एक तरफ में शिकारी, कैसे मैं बचूं। बस उसने आंख बंद करके त्राही त्राही करके भगवान को पुकारने लगे। इतने में देखा बड़ी जोरों से आंधी आई, इतनी जोरों से जो पत्थर कंकड़ भी उड़ने लगे और शिकारी के आंखों में वो कंकड़ पत्थर और धूल भर गई, और गेहूं उसने हाथ उठाया अपने को ये बचन इसके आंख को ठीक करने के लिए, इतने में बाण उछला और कुत्तों को लगा, कुत्ते तो दो एक मरे और दूसरे की हाथ भागे, और इतने में जो बरसी वर्षा होने लगी, आग बुझ गई और जाल कहां उड़ करके चला गया, और उधर शिकारी भी बैठ करके दोनों आंखों को ऐसे करना। इसने हिरण ने देखा ये चारों तरफ में रास्ता साफ, बस जिधर से इच्छा आई उधर से दौड़ती हुई जंप करती हुई और निकल करके चली गई। बहुत ऐसे ही हम संसार में बहुत से दुखों से घिरे हुए हैं, पल पल में दुख आते हैं, पल पल में हमें कठिनाई आती हैं, और ऐसा कि अब कैसे बचें, मतलब ये पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। उसी समय यदि कोई सब कुछ छोड़ करके सहारा हाथ उठा दे द्रौपदी की भांति, हे प्रभु रात शरण अब तो जीवन हर, बस सारी समस्याएं मिट जाएंगे, एक मिनट चुटकी बजाते ही देखेंगे चारों तरफ न रास्ता साफ हो गया, और जम को और मृत्यु के भी सिर पर पैर रखते हुए एकदम वैकुंठ बोलोक में वो चला गया। ये गुरु होने की शक्ति, इसलिए भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो और पूर्ण में विश्वास करो, भगवान के भजन के बिना कहीं भी सुख और शांति नहीं। बारी मथे बरु हो यिकताते बरु दे बिनु हरि भजन न भव दरिय यह सिद्धांत सयपे। बार मथे बरु ही पानी के मतने से भले ही पिलोने से घी निकल आए, नहीं निकलेगा लाख जन्म में भी, तभी ये मान लेते हैं यहाँ निकल सकता है और बार मथे बरु हो टिकताते बरु से, और जमुना की रेती उठा लाओ और घानी में दे दो और उसको पीसते रहो लाख जन्म तक तो अभी तेल नहीं निकलेगा, किंतु मान लिया कि हाँ इसमें से भी तेल निकल सकता है, ये असंभव भी संभव हो सकता है, किंतु भाई एक चीज नहीं होगा, दिन हरि भजन न भवचर्य, बिना भगवान के भजन के इस संसार को, इस संसार के कष्टों को आप जन्म जन्मांतर तक भोगते रहेंगे किंतु पार नहीं हो सकते हैं, इसलिए दुखों को पार करना चाहते हैं और नित्य आनंद और सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, बहुत सरल, चलते फिरते उठते बैठते नाम का स्मरण करो, चलते फिरते कीर्तन कर, राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय बनाओ, घर के साथ काम करो, बच्चों को पालो पोसो, इसमें क्या लगता है, चलते फिरते कहने में पैसा नहीं लगता, पवित्र स्नान करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, उसमें कोई खर्च नहीं है, फिर क्यों, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर कर सकते, पैसा लगता है, अरे जैसा स्वर नहीं है, राग नहीं है, हारमोनियम ताबला एसराज नहीं, कोई बात नहीं, मोटी आवाज में भी तुम लोग कर सकते हो, इसमें क्या लगता है, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी इसी से और जीवन में सुखी और शांति हो सकते हैं, इसीलिए झूलन का त्योहार हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाया है, कृष्ण इस झूले में कितना आनंदित रूप में झूलते हैं, करोड़ों गोपियों को झूलाते हैं, अपने झूलते हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियों को झुलाते हैं, उसमें प्रेम नित्य करता है, दूसरों समय नित्य कराता है, राधा कृष्ण को भी नित्य कराता है, सारा ब्रज नाचता है, भक्त लोग नाचते हैं, कोयल नाचती है, मयूर कूदते हैं, नाचते हैं, सभी लोग इसमें तन्मय हो जाते हैं, इसे बढ़कर के कोई सहज सहज तरीका नहीं है विश्व से उद्धार होने का, इसलिए आप लोग हरि नाम कीजिए, कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कीजिए, इनके मधुर मधुर पदों का गायन कीजिए, देखेंगे संसार कहाँ दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा, अभी आप कीर्तन कीजिए महामंत्र का करो। ये लोग न भी आए तो वैष्णव की चरण की धूपी हम लेने के लिए लोभ होगा, उनकी बातों में उपदेशों को ग्रहण करने के लिए हमको लोभ होगा, संसार में एक अमूल्य निधि है वैष्णव का चरण अमृत, वैष्णव का मुखामृत उच्छिष्ट और वैष्णव का पद भव्य, जगत में जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं बहुत दिनों में स्नान करने से कहीं थोड़ी सी निर्मलता आती है, और वैष्णव का चरण अमृत यदि कोई धारण करता है, साथ ही साथ में कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, वैष्णव का अधरामृत, अधरामृत मने क्या, उचित भोजन और अधरामृत मने उनकी हरि कथा यदि कोई धारण करता है, साथ ही साथ में उनका हृदय पर जल जाता है और कृष्ण के चरणों में प्रेम है, और उनका चरणामृत पान करने से तीन ये महाबल है भजन के लिए, किंतु वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव वैष्णव ठगबाजी करने वाले वैष्णव नहीं, यथार्थ में समस्त वैष्णव गुणों से अलंकृत होने पर ऐसे वैष्णव का आदर करें, उनका संग करें, उनके अनुगत्य में रहकर के भजन करें, इससे बढ़कर बिना वैष्णव संघ के आज तक कोई भी साधु नहीं हुआ, बिना वैष्णव संघ के चित्त निर्मल नहीं होगा, भक्ति भी नहीं आएगी। इसलिए इन चीजों को हमको ध्यान रख सके, वैष्णव की चरण सुविधा सेवन करें, श्रोतापति शामिल धर्म करें। कब वैष्णव हमारे पर दया करेंगे, किसके लिए दीन ही होकर करेंगे, सब भगवान का भजन। अपने प्रयास से लाभ करो वो सब कर लें, इस चीज को समझो। कर्म के द्वारा भगवान नहीं मिलते, लाभ तुम करो अपने मन से, अपने मन से तुम हरिनाम करो, वो भी कर्म है। अपने मन से शास्त्र विधियों का उल्लंघन करते हुए तुम भजन करो, एकांतिक हरि भजन भी, तो क्या है उत्पत्ति उत्पाद, वो केवल उत्पाद है। आज हम देखते हैं हमारे गुरु जी कहते हैं, जो नृत्य में भजन करते हैं, वृंदावन में जा करते हैं, माधुरी करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वैष्णव का संग नहीं करते, हरि नहीं कथा करते, दो दिन के बाद में जरूर उनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। हमारी भी अजमाई चीज हम देखते हैं, गुरु वैष्णव का आदेश न लेकर के उनका अनुगत भजन नहीं करते, दो दिन तक खूब परिक्रमा करेंगे, निर्जला उपवास करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, और तीसरे दिन कहते हैं प्यारे ये क्या किया, तो कुछ हुआ नहीं, अपने पैरों पर बल पर खड़े होकर के माधुकरी करने जाएंगे, हम तो अपना रिक्शा चलाएंगे और भजन करेंगे। दो दिन के बाद में रिक्शा खींचने लगे, तीसरे दिन के बाद में परिणाम करना तो गया झोली में, और वैष्णव के प्रति आदर की उठा उठ गया, मैं गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ, उपवास करता हूँ, आया बिना ले गया एकदम जहन्नम में, किसी स्त्री को भगा करके लेकर के चले गए, ये इनका भजन हो गया खत्म। इसे गुरु वैष्णव के अनुगत में हो, निर्जय में भजन करने की चेष्टा मत करो, ये हमने प्रभुपाद जी के मुख से, गुरु वैष्णव के मुख से, भक्ति विनोद ठाकुर जी के और महाभाव श्रीमद भागवत का विचार देकर मत जाओ भजन करने के लिए, निर्जय वैष्णव के संग में उनका शासन करते हुए उनकी कृपा से तुम लोग भजन करते, और अपने मन से नाम करेगा वो क्या है, खंचना, काशी जाना मैंने क्या, और अस्थित खंचना के मन इधर रहे, इसलिए वैष्णव के चरण में अनुगत मेरा करके वैष्णवता सीखो, वैष्णवता के गुण तुम्हारे अंदर में आए, यथार्थ कृपालुता हो, दयालुता हुए, सहिष्णुता हुए, और सब गुण आए, सब में संभाव आए, एक तरह से संभाव की जरूरत नहीं है, संभाव नहीं, जिसमें जैसा गुण है भक्ति है उसके प्रति आदर हो, जिसमें भक्ति नहीं है उसके प्रति आदर नहीं हो, ये सब गुरु वैष्णव के नहीं पाए। इस तरह से हम अपने हृदय में सब वैष्णव गुणों को लाने की चेष्टा करेंगे, और भगवान का वैष्णव के अनुगत में भजन करेंगे, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए वैष्णव का चरित्र भगवान के चरित्र से भी अधिक प्रभावशाली और हमारे लिए आगे चल सकते हैं। वहीं से बोलो, वहीं से बैठे।